प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग तीन, लेक्चर नंबर 158। ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम
नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ॐ शुद्धात्मने नमः।
नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सुर सुर नरपति वंजने प्रविनष्ट घाती कर्मने प्रणमन करू धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सब सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवणि हो मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिये गणधरयने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने अशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनि ये नाति शिव प्राप्ति वने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्योक्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये तीसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 110 पर हम आ गए, 110। नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना भावार्थ के ऊपर का, वहां से हम पढ़ेंगे। देखो ये पांच पॉइंट्स बताए थे यहाँ पर, यानी वो अनाकुल क्यों है, सुखमय क्यों है, केवल ज्ञान, उसकी बात चल रही थी। तो कहते ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर, वो पांचवें पॉइंट की बात हो रही थी, यानी कैसा लोकालोक है कि जिस लोकालोक ने अपने त्रिकाल का सारा स्वरूप समर्पित कर दिया केवल ज्ञान में, ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से अवग्रहादि रहित है। अवग्रह अर्थात एक के बाद एक जानना, उससे रहित है, यानी अवग्रह इहा अवाय और धारणा, वो तो क्रम से निर्णय तक पहुंचने वाली जो ज्ञान की बात रहती है। इसलिए क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद, ग्रहण यानी जानना, पदार्थों को जानना क्रम से हो रहा है और वो खेद का कारण है, और केवल ज्ञान में ऐसे खेद का अभाव है। क्रम से जानना तो खेद है, विशेष जानने की इच्छा 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 तो खेद है, क्योंकि इच्छा ही दुख है, भले वो जानने की भी इच्छा क्यों न हो वो भी दुख रूप है। इस क्रम से जानने की इच्छा का अभाव हो गया। इस प्रकार उपरोक्त पांच कारणों से प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है। ये अनाकुल है वही सुख है, अनाकुलता ही सुख है। इसलिए वास्तव में वह पारमार्थिक सुख है, पारमार्थिक एक होता है लौकिक इंद्रिय सुख जिसको माना हुआ है कल्पना का है और ये तो अलौकिक पारमार्थिक और निश्चय से यही सुख है। पारमार्थिक सुख यह है और कहीं सुख है नहीं। ये तो पारमार्थिक अपना अन्य भी सुख होगा ना कहीं तो कहते है ही नहीं वहां पर उसको कह दिया है लोगों ने मान लिया है। भावार्थ शाही ज्ञान यानी केवल ज्ञान एकांत सुख स्वरूप है यानी वो सुख स्वरूप ही है। लो 59 गाथा पूरी हुई। ज्ञान अधिकार है ना वह अव्यापाद हो गया केवल ज्ञान हो गया बाद में बाधा है नहीं ज्ञान में भी कोई बाधा नहीं रही क्षाई ज्ञान हो गया। वह तो निमित्त में शाता वेदनीय टले इसलिए अव्यापाद कहने में आता है वहां दुख नहीं है ये सुख भी अनंत सुख है कोई दुख नहीं है परंतु अभी बस कर्म बाकी है उसकी बात कौन से अव्यापाद यानी वहां कोई बाधा नहीं बाधा रहित देखो क्या कहते हैं अव्यापाद कभी आता है कहने में अव्यापाद अनंत सुख अरिहंत को कैसा सुख है अनंत सुख है और सिद्धों को अव्यापाद अनंत क्या डिफरेंस पड़ा वेदिनी की सत्ता है ना इसलिए इतना ही बताना था। वो वेदिनी कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि मोहनीय का पूरा क्षय हो गया है और ज्ञान भी अनंत ज्ञान हो गया तो अनंत सुख भी है ही है फिर भी वो कर्म का वहां निमित्त बताना है उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है तो उसको कहेंगे बाद में वो अव्यापाद या अव्यापादत्व गुण कब प्रकट होता है वेदनीय कर्म के क्षय के बाद। हाँ इसलिए क्या कहा लास्ट लाइन में वह तो निमित्त में शाता वेदनीय टले इसलिए अव्यापाद कहने में आता है वहां दुख नहीं है और वो भी शाता को बताया ऐसा नहीं कि असाता है इसलिए अव्यापाद नहीं है ऐसा भी नहीं कहा साता असाता दोनों ही है वहां पर। सम्यक ज्ञान तो उत्पन्न होता है चौथे गुण स्थान से समकित हुआ तब से पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यानी सम्यक इनमें मति शुद्ध अवधि मन परि सब सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान प्रमाण है परंतु वो सम्यक है परंतु पूर्ण नहीं है कौन सा चौथे गुणस्थान वाला सातवें गुणस्थान वाला कहो श्रेणी वाला कहो बारहवें गुणस्थान में भी क्या कहेंगे उसको पूर्ण ज्ञान नहीं कहेंगे। तेरहवें में क्षायिक हुआ ज्ञानावरण का पूर्णतः क्षय हो गया तो वो केवल ज्ञान हुआ यही कह रहे देखो यानी समकित हुआ तब से ज्ञान तो सम्यक ज्ञान था परंतु अभी ये पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान हुआ और बाद में सिद्ध होते हैं तब यानी अभी अरिहंत की बात चल रही है और जब सिद्ध होते हैं तब अनंत ज्ञान जो हुआ उसे अव्यापाद कहने में आता है। वैसे तो सुख के लिए भी अव्यापाद सुख हुआ ऐसा बाद में कहने में आता है वो ये तो जस्ट अपेक्षा से क्योंकि वहां कर्मों की सत्ता है बस इतना बताना है। ज्ञान बढ़ गया ऐसा कुछ नहीं है, है ना ज्ञान तो पूर्ण है और उसमें कोई बाधा आती है ऐसा भी नहीं है। श्रोता पूछ रहे हैं सुख में कुछ फर्क है नहीं सुख में कुछ फर्क नहीं मात्र वहां निमित्त में निमित्त ने अभी अभी आघाती कर्मों की सत्ता है तो निमित्त में संयोग प्रतिकूल था उसका अभाव हुआ प्रतिकूलता यानी कोई तकलीफ वाला ऐसा नहीं लेना कर्म की सत्ता थी बस इतना ही बताना था तो अव्यापाद हो गया ऐसा कहने में आता है एक कथन के लिए है। सुख में तो कोई डिफरेंस नहीं है जैसा अरिहंत का सुख है वैसा ही सिद्धों का है। अभी साइड गाथा अब ऐसे अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा भारी कमाल का खुलासा करते हैं। वो आने वाली गाथा की बात यहाँ बता रहे हैं गाथा तो नेक्स्ट पेज पर शुरू होगी यहाँ पढ़ लेते क्या कहेंगे यहाँ इस गाथा में कि खेद का संभव होने से केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है क्या कहते हैं कौन से अभिप्राय का खंडन करेंगे कि खेद है इसलिए केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है इस अभिप्राय का भी खंडन करेंगे।
एकांतिक सुख
यानी केवली को भी कुछ दुख है ऐसा कहने वाले जीव हो गए तो उनका अज्ञानी है, ये अज्ञानी है ना। कैसा अज्ञान, केवली को रोग हुआ तो दुख मान लिया उसको, केवली को कोई उपसर्ग माना, ये क्या भूख लगी केवलाहार होता है, ये सब ये ऐसी मान्यताओं का खंडन होगा। दस लगे वही तो रोग हुआ, वो दस वाला रोग समझते हैं ना, डिसेंट्री, वो भी कौन सा ब्लड जाता है। अरे जिसके जन्म से ही निहार नहीं है, उनके आहार है पर निहार नहीं है, मलमूत्र नहीं होते तीर्थंकर के जीव को जन्म से, हाँ उनके माता पिता को भी नहीं होते, और ये केवल ज्ञान होने पर उनको आहार भी है कह रहे और निहार, यानी वो तो दस लगे, यानी कैसी विचित्र, यानी ऐसी शास्त्र रचना करने वाले कितने, जिसको परवर्टेड कहेंगे हम, परवर्टेड यानी कोई मानसिक ऐसा होगा तो ये ऐसी रचना कर सकता है क्या? अरे है ही नहीं वहाँ पर, अरे जो आज के श्रावक नहीं करेंगे वो तीर्थंकर का जो वहाँ का मांसाहार भी ठहराया उसको, मांसाहार निमिनत नहीं, महावीर वो बात अलग, ये महावीर को खिलाया ऐसा कुछ आता है उनके अंदर, हाँ आया था है ऐसा है हाँ ऐसा आता है, हाँ है आपने नहीं, इसलिए वो आचार्य अत्रेय ने महावीर भगवान मांसाहारी था ऐसे कितना कितना उसमें आता था, हाँ हाँ है वो, यानी ऐसे जिसको कहें विपरीत सारी रचना हो गई, बहुत विपरीत है
वो तो, कुछ से हेतु साध्य करने के लिए ऐसे महावीर करते हैं तो अपने को क्या हर्ज है?
नहीं ऐसे ही है ना, यानी वो तो रचना करना रहे तो अपन, जिस काल में ये रचना हुई होगी कितना द्वेष या कितनी विपरीत बुद्धि होगी ये कहना चाहते। हाँ देखो क्या ये अभिप्राय का यहाँ खंडन करेंगे, कौन सा अभिप्राय है?
अभी भी द्वेष बुद्धि तो चलती है कि फला फला जगह से छपा हुआ साहित्य यहाँ नहीं रखना,
देखो ये बात अलग है और पूरा ग्रंथ रचना ही ऐसे विपरीत होना उसकी बात चल रही है यहाँ पर। वो तो चले जो जैसे परिणाम करता है तो ऐसे फल में तो ज्ञानावरण का ऐसा तीव्र बंद होगा तो कितना अनंत काल तो एक इंद्रिय में चला जाएगा, ज्ञान की हीनता होनी है ना उनकी। तो देखो कौन सा अभिप्राय गलत है? खेद का संभव होने से केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है, पहले बताया ना वो तो बिल्कुल एकांत से सुख है बताया था, अब कहते कोई ऐसे उल्टे अभिप्राय वाले भी है तो उनका खंडन करते हैं, क्या कहते हैं भाई मिला ना 111 पेज पर, ताराबेन को ढूंढ के बताओ, एक आदमी रखो, हाँ सेक्रेटरी रखो, एक सेक्रेटरी, अभी नई गाथा शुरू होने के पहले पेज पर उनकी 60 नंबर की गाथा देखो ना, उसके पहले देखो, आपने मार्क रखा होगा तो उसमें भावार्थ कहाँ लिखा है उसके आगे की नेक्स्ट पेज नेक्स्ट का, हाँ देखो क्या कहते हैं मिला ना तीसरी लाइन, वो सांड गाथा जहाँ लिखा है वहां से तीसरी लाइन के, आत्मा में पूर्ण स्वरूप केवल ज्ञान होता है परंतु वह भी परिणमन है ना, वह परिणाम है ना, परिणमता है ना, इसलिए परिणाम है तो खेद है ये कोई भी दलील है, उल्टी सुल्टी परिणाम है इसलिए क्या खेद है, क्योंकि परिणाम परिणम ना हुए क्या थकावट आ जाती है क्या, खेद कैसी बात है ऐसा अज्ञानी प्रश्न करता है। कहां तक ले गए देखा, केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव, खेद अर्थात थकावट लिखा है ना, थकावट यानी वो परिणमन किया इसलिए वो थका ना गए संताप दुख क्या कहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है ना, ऐसे भी कैसी कैसी खोटी मान्यता होती होगी। अभी यहाँ तो वो परिणमन है इसलिए खेत, ऐसे भी मानते हैं ना कि अभी उनके मोक्ष निकट आया तो अभी थकान से वो ऐसे लेटे थे, फिर वो गौतम को बुलाया, ऐसी ऐसी वो बातें बताई थी एक बार आपको। शलाका पुरुषों के होता है, उनका भोजन तो होता है, उनके निहार नहीं होता, मलमूत्र उनके नहीं है, वो तो ऐसा ही पच जाता है सारा, वो कारण नहीं है, यही उनकी विशेषता है, वो शरीर की ऐसी विशेषता है, रचना ही ऐसी है। हाँ अतिशय कहो, क्योंकि वो तो उनके मन, उनके माता पिता की भी बात है, अन्य भी शलाका पुरुषों के नहीं होता है। हाँ किसी किसी को है ऐसा, अभी एक एक का नाम लेके मुझे याद नहीं है, परंतु हाँ तीर्थंकर के और उनके माता पिता की तो बात आती है। देखो क्या कहते हैं, ये नया पैराग्राफ नीचे से दूसरा, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ये तो त्रिकाली स्वभाव भाव, केवल ज्ञान पाया यानी परिणमन हुआ, केवल ज्ञान रूप परिणमन हुआ, तो केवल ज्ञान परिणमन करता है ना, परिणमन करता है ना, वह कोई ध्रुव नहीं है, ध्रुव सामान्य के ऊपर तो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ है परिणमित हुआ है, तो वह तो परिणमन करता है, और परिणमन करता है तो थकान लगेगी कि नहीं। अब सुबह से काम करते हो, थकान लगती है कि नहीं लगती है? हाँ तारा बे अभी बहू नहीं घर में, तो कितना काम करना पड़ता है, फिर थकान हो जाती है। परिणमन करता है तो दुख होगा कि नहीं, ये अज्ञानी की ऐसी दलील है। हाँ परिणमन तो आत्मा का स्वतः स्वभाव है, क्या कहा, स्वतः स्वभाव है, और स्वभाव कभी दुख रूप नहीं हो सकता। तो परिणमन करना पुद्गल में है ना, तो उसको कितना दुख होता होगा, परिणमन से थकान होती है तो पुद्गल परमाणु भी थक के किसको बताता होगा, जीव को, अरे मैं अभी थक गया हूँ। हाँ हाँ खेद का संभव होने से, देखो गुरुदेव को या कहो आचार्य को ऐसी गाथा लिखने की क्यों नौबत आई, क्योंकि कुनकुंदाचार हुए उस जमाने में, ये तो नया नया ये तो श्वेतांबर पद स्थापन हुआ था, और उनके ऐसे मिथ्या मान्यता वाले सामने शिष्य भी हो गए ना कोई पूछने वाले, तो उसका निषेध करने के लिए इस तरह से बात कर रहे। कोई कोई कहते हैं ना कि तीन काल तीन लोग जानना, परिणमन ऐसे ही रहना, ऐसे परिणमन करना तो खेद है, क्योंकि हमको भी खेद होता है उनकी भाषा में, कि द्रव्य नियोग ठीक है वो तो ठीक, करना नियोग जानने से खेद हो जाता है। तो कहते कि खेद नहीं है, वह तो परिणमन का तो स्वतः स्वभाव है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, छह द्रव्य है वो हर समय परिणमन होता रहेगा अनादि से अनंत काल तक, कौन सा हो रहा है क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करनी, परिणमन करना यह द्रव्य का स्वभाव है, और स्वभाव तो कभी दुख रूप हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान एक समय में है, दूसरे समय में ऐसा ही परिणमन, वैसा का वैसा, वही का वही नहीं है, हर समय में नई पर्याय है। हाँ पूर्व पर्याय जैसी ही नई पर्याय हो रही है, तो हम कहते हैं वो बदलना नहीं, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कुछ अन्य टाइप का हो जावे तो बदलना, बदलना का अर्थ होता है पूर्व पर्याय नहीं रही अब नई उत्पन्न हुई, उसको बदलना करते, उसको परिणमन कहते, वैसी की वैसी वही नहीं है, यानी सिमिलर बट नॉट द सेम, जैसे केवल ज्ञान था दूसरे समय में केवल ज्ञान, तीसरे समय में केवल ज्ञान, कब तक, अभी सादी अनंत काल तक, सादी ने एक बार उत्पन्न हुआ, प्रति समय 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 कितने बार होगा, तो अनंत, उसके कोई एंड नहीं, अभी कायम हमेशा के लिए केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान होता रहेगा, फिर भी प्रत्येक समय का जुदा जुदा। तो इसलिए कहते कि उसमें खेद होता होगा, ऐसा अज्ञानी की मान्यता है। तीसरे समय में ऐसा ही परिणाम, ऐसा परिणमन है, वह तो उसका स्वभाव है, वह दुख नहीं। क्या कहते हैं, भगवान आत्मा में अंदर सामान्य चीज ध्रुव है, ये सामान्य त्रिकाली स्वभाव भाव, और पर्याय उसके ऊपर है, ऐसा कहने में आता है ना। उस पर जो केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, उस केवल ज्ञान में परिणमन तो है, तो परिणमना वह खेद है कि नहीं, ऐसा अज्ञानी का प्रश्न है। तो कहते खेद का संभव होने से, यानी पॉसिबिलिटी होने से, केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं, यानी सर्वथा सुख नहीं है, उसमें कथनचित किसी अपेक्षा दुख भी कहो, ऐसा उनका कहना है, ऐसा अज्ञानी कहता है। एक तारणपंथी वाला आया था, वह कहता था कि सिद्ध में भी पर्याय कुछ मालूम नहीं, वहां भी पर्याय चिपकी, दाढ़ी रखते थे अब तो मर गए, ऐसा कहते थे, देश की सेवा करनी ये करना, धूल भी नहीं करना करता, अभिमान। नीचे लाइन के नीचे देखो, 112 पेज पर, अभिमान है, तेरी सेवा करना, पर की सेवा कौन कर सकता है, अपनी सेवा अपनी का तो खबर नहीं है मैं कौन हूँ, हाँ, और पर की सेवा में धर्म मान रहा है। वह कहते हैं, कहते थे सिद्ध में भी पर्याय, सिद्ध को भी परिणमन, वहां भी पर्याय चिपक गई। उनको लगता है मोक्ष होना नहीं, सब कुछ बंद हो जाना, अभी परिणमना परिणमन तक गया है जी। अरे परिभ्रमण का अभाव हो गया, जन्म मरण का, परिणमन का नहीं। परिणमन तो स्वभाव है, वो कोई दोष नहीं है। यह प्रश्न है, यहाँ यह प्रश्न है, खेद का संभव होने से केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है, ऐसा अज्ञानी कहता है। उसका उत्तर, उसके उत्तर में यह भी गाथा चलेगी। ऊपर पहले संस्कृत पढ़ते हैं, अथ केवलस्य अपि परिणाम द्वारे न खेदस्य संभवात् एकांतिक सुखत्वम नास्ति इति प्रत्याचष्टे। क्या कहते हैं, यानी अभी यहाँ पर केवलस्य यानी केवल ज्ञान के भी परिणाम, वो परिणमित है ना, परिणाम है उसके कारण, उसके भी खेद संभव होने से वहाँ एकांत से उसके सुखत्व नहीं होता है, ऐसा पूछने पर उसकी उत्तर देते हैं उसका। गुजराती में उसका क्या ट्रांसलेशन के, नेक्स्ट पे 114 पर, हवे 114 पर लिखा है उसका अर्थ, केवल ज्ञान ने पण परिणाम द्वारा खेदनो संभव हुआ थी, केवल ज्ञान एकांतिक सुख न थी एवं अभिप्राय नु खंडन करे छे। गाथा तो लिखी थी कुंकुंदाचार्य ने, और उसका हेडिंग मथाड़ू जो लिखा है वो अमृतचंद्राचार्य ने। ये गाथा ऐसी क्यों लिखी होगी, तो कहते ऐसा खंडन करने के लिए, अभिप्राय का खंडन करने के लिए ये गाथा है। अब हम गाथा पढ़ेंगे। जम केवलम तिनाणम तम सोखम परिणमम च सोचेव खेदो तस्सन भणिदो जम्हाघादी कयम जाना यत् केवलमिति ज्ञानम तत्सौख्यं परिणामश्च सचैव खेदस्तस्य न भणितो यस्माद्भाति निक्षयं जातानि जे ज्ञान केवल तेज सुख परिणाम पणवळि तेज छे भाख्यो न तेमा खेद जेथी भाति कर्म विनष्ट छे। वो तेज में ते और जो जुदा चाहिए ना, और वही ना, तेज यानी वो तो कोई तेजस्वी प्रकाश नहीं है, दो बार तेज आया है।
विनिष्ट लिखा है, वो विनष्ट चाहिए,
भाति कर्म विनष्ट छे, पीछे बराबर है, विनष्ट छे। वो तेज में गैप होना चाहिए, दो बार है एक लाइन में। अभी उसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। हाँ पीछे, हाँ हाँ उसमें, हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पीछे भी बराबर लिखा है 114 पेज पर, जे ज्ञान केवल तेज सुख परिणाम पनवड़ी तेज छे, ये बराबर है। अन्वयार्थ देखते हैं। अन्वयार्थ इसमें जो हमने संस्कृत पढ़ा है ना, उसको लेकर एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। यतने जे केवलम इति ज्ञानम, केवल नामनु ज्ञान छे, तत् सौख्यम ते सुख छे, परिणाम च परिणाम पण सहच एव तेज छे। वही परिणाम है, वही पर्याय है, केवल ज्ञान है वही सुख है, और ये पर्याय की बात चल रही है, वो पर्याय है, परिणाम है। तस्य खेदः न भनिता, तेने खेद कयो नथी। उन्होंने प्रश्न कुछ पूछा नहीं है, परंतु अमृत चंद्राचार्य ने इसके ये क्यों ऐसी गाथा लिखी, तो कहते ऐसा प्रश्न किसी अज्ञानी के होता है, उसके खंडन में गाथा गई, तो कहते उसको खेद नहीं होता, उसको खेद कहो नथी। अर्थात केवल ज्ञान मा सर्वज्ञ देवे खेद कहो नथी, यस्मात कारण के घातीनी यानी घाती कर्मों क्षयम जातानी क्षय पैम्याचे। ये कौन से घाती कर्म उमा बेन मालूम है आपको? नहीं मालूम, कोई बात नहीं है। तारा बेन आप बताएंगे कि दक्षा बेन को बताना है? हाँ सबका सरदार मोहिनी पहले जाता है, कब जाता है? दसवें में। हाँ और बाकी तीन बारहवें के अंत में, और तेरहवें में गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है। इन्हें ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय का पूर्ण क्षय, सत्ता में से नाश हो जाता है। गुरुदेव जड़मूल से, गुरुदेव तो आगे कहेंगे भावघाती कर्मों का नाश कर दिया। ये अधूरा रूप परिणाम ना या विपरीत रूप परिणाम, ये तो जीव के परिणाम में है, उसका वहां नाश हो गया, उसको भावघाती कहेंगे। बहुत जगह कहा है, यहाँ कहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं, टीका की बात पढ़ेंगे, अमृत चंद्राचार्य की टीका, पेज नंबर 114। नहीं टीका कहाँ से? और यहाँ वाली टीका, ये टीका का प्रवचन है, अच्छा प्रवचन 113 पर, ठीक है ठीक बरोबर। अही केवल ज्ञान ने बाबत मा, एक नंबर खेद शो, दूसरा नंबर परिणाम शा, तथा तीसरा नंबर केवल ज्ञान अने सुखनो व्यतिरे केटले भेद शो, के जेथी केवल ज्ञान ने एकांतिक सुखपणु न होए। क्या कहते हैं अभी उसमें क्या है? उसमें खेद नहीं है, देखो देखो, यानी उसमें खेद कहाँ है? परिणाम शायद अन्य परिणाम की भी बात नहीं, वो परिणमन है, परंतु जैसे नीचे के गुण स्थानों में अन्य परिणाम यानी चारित्र गुण के शुभाशुभ परिणाम होते, वैसे तो वहां कुछ है ही नहीं है, तो वहां खेद का भी सवाल नहीं है। और केवल ज्ञान यानी सुखों में व्यतिरेक्षो यानी भेद शो, केवल ज्ञान है वही सुख है, उसमें भेद भी नहीं है, इसलिए उसको एकांतिक सुख नहीं है ऐसा मानना गलत है। अभी उसको एक एक पॉइंट को समझाएंगे। तो कहते खेद शो यानी खेद कैसे होगा, यानी खेद नहीं होगा, तो खेद कहाँ होता है उसकी बात पहले बताएंगे। तो खेद ना आयतनों, आयतन किसको कहते हैं? स्थान। कोई आपको ऐसा आयतन शब्द पहले सुना है? अनायतन सुना है? सुना है। अनायतन अन आयतन, जो आयतन नहीं है उसको अनायतन कहेंगे। अस्थान। समय दृष्टि के लिए अनायतन कौन से है? छह अनायतन का त्याग करता है ना वो। अभी बोलो लक्ष्मी, आप बोलिए। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उनके सेवक, उनके भक्त, उनके अनुयायी, यानी वो उसी मत वाले सर, इनको समय दृष्टि जीव वो तो उसके टालता है ना, त्याग करता है, क्योंकि वहां तो कोई उसको सत्य मार्ग मिलने वाला नहीं, उल्टा तो विपरीत ही सुनने को मिलेगा। वो आया है कलकत्ता से, कोई एक बुक आया है 400-450 रुपये, हाँ 425 रुपये कीमत, इतनी सी है, खाली उसका डेकोरेशन ही बहुत किया है। एक दो पेज निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे कितनी विपरीत, यानी वो श्वेतांबर को भी देने का योग्य नहीं है, क्योंकि हम तो वो विपरीतता का ही पोषण करेंगे प्रसिद्धि का। नहीं, श्वेतांबर की है और कहीं से आया है, हमारे वितरागवाणी प्रकाशक करके आया है, मुफ्त में आया
है।
देखो देखो, हाँ, पर हमारी अनुमोदना नहीं उसको, हाँ, अरे हमारे पास वापस लौटाना भी नहीं, जो उसका उसका डिस्पोज करना है वो कर दो। हाँ देखो, देखे देना आयतनो इन स्थानो घाती कर्मो छे, केवल परिणाम मात्र नहीं।
यहाँ पर ये बता रहे हैं
परिणाम ना, ये खेद नहीं। हाँ बोलिए।
यहाँ पर ये घाती कर्म जो है वो घाती कर्म खेद के आयतन यानी खेद के स्थान है, वो इसमें नहीं है, क्योंकि उनका घाती कर्म नष्ट हो गए।
घाती में भी मुख्यतः तो मोहिनी का है, परंतु यहाँ तो हाँ देखो, खेद ना आयतनो, ये स्वामी जी और इसको खोलेंगे, घाती कर्मो छे केवल परिणाम मात्र नहीं, घाती कर्मो महामोहना उत्पादक होवाती। देखो ये कर्म कुछ उत्पादन नहीं करते, जीव उसका लक्ष्य करके स्वयं मोहरूप परिणमित होता है, परंतु कथन में ऐसा आता है, कथन ऐसा होने पर भी हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि कर्म की अवस्था कर्म में, कर्म के कारण जीव की अवस्था जीव में उसके अपने कारण होती है। कहेंगे कि वो घाती कर्म है, मोहनी कर्म है, वो महामोह को उत्पन्न कराते हैं, पर वो जीव स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है, ये बात लेना वहां पर। क्या कहते हैं, घाती कर्म महामोहना उत्पादक होवा थी, धतुरानी माफक अतत्मा तद्बुद्धि धारण करावी। ये धतुरा क्या होता है मालूम है? क्या होता है? हाँ, उससे क्या होता है सेवन करने से? विपरीतता हो जाती है, यानी वो हाँ, उसको सही क्या है गलत क्या है इसका पता नहीं चलता, इसलिए कहते हैं अतत्मा तद्बुद्धि धारण करावी, जो नहीं है उसमें है पना की बुद्धि, यानी विपरीत मान्यता। आत्मा ने गेय पदार्थ प्रति परिणमावे छे, परिणमावे छे का अर्थ गेय प्रति परिणमन का अर्थ हमने पहले क्या देखा था याद है? गेयार्थ परिणमन कहा था, यानी राग की उत्पत्ति होती है। अब पहली सब गाथाएं भूल गए हम, क्या करें अभी। तेथी ते घाती कर्मो दरेक पदार्थ प्रति परिणमी परिणमी ने थाकता, प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित परिणमित होना, यानी क्या है, एक का लक्ष्य करो, दूसरे का करो, तीसरे का करो, क्यों? ये गेयार्थ परिणमन कहते हैं, और राग की उत्पत्ति हो रही है वहां परिलक्ष्य से हो रही है, केवल ज्ञान कैसे आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा में से उत्पन्न हुआ है, वहां तो कोई राग है ही नहीं है। और बाकी जो है वो तो जहां मोहनीय कर्म है वहां क्या हो रहा है? गेयार्थ, यानी प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमी परिणमी ने थाकता ते आत्मा ने खेदना कारण थाई छे। सच में जाए तो जीव के जो स्वयं के परिणाम है कौन से? मोह राग द्वेष, वही खेद के कारण है, वो स्वयं दुख रूप है। तेमनो इतले घाती कर्मोनो अभाव हुआ थी, केवल ज्ञान मा खेद नु प्रकटवू क्यांथी थाय? एक पॉइंट, यानी वो खेद शो कहा ना, यानी केवल ज्ञान में खेद नहीं है। दूसरा पॉइंट, परिणाम शाह कहा था, वही त्रण काल रूप त्रण भेदों जेमा पाड़वामा आवे छे एवा समस्त पदार्थों ना गेयाकार रूप। समस्त पदार्थों के गेयाकार उसमें तीन भेद पड़े। कौन से? क्या कहा यहाँ पर? अभी हमने क्या पढ़ा? उमाबेन क्या लिखा है? कौन से तीन भेद पड़े? समस्त गेयाकारों में तीन भेद हो गए। हाँ, तीन काल के पर्याय ना, भूत पर्याय, भूतकाल के पर्याय, वर्तमान के और भविष्य के। यह क्या लिखा देखो, वही त्रण काल रूप त्रण भेदो जेमा पाड़वामा आवे छे। ऐसे कौन है? कि समस्त पदार्थों ना गेयाकार, इसी को गेयाकार लिए कि सभी अनंत पदार्थों के तीन काल के पर्यायों सहित वो जो द्रव्य है उसको गेयाकार कहे। तो कहते उस विविधता ने प्रकाशवाना, विविधता ने इसमें अनेकता है, कितने कितने द्रव्य उनके अनंत गुण उसकी तीन काल की पर्याय उसमें कितने वेरिएशन कितनी बातें होगी। तो कहते उस सबको प्रकाशवाना है, उसको जानने में प्रकाशवाना स्थानभूत केवल ज्ञान। दूसरी बात क्या है? चित्रेली भींतना माफक अनंत स्वरूपे पोतेज परिणम तु हुआ थी केवल ज्ञानज परिणाम छे। यानी वो केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमित हुआ है, वहां अन्य कोई परिणाम नहीं है, ये कह रहे। कैसा है वो देखिए, ये कहना चाहते चित्रेली भींतनी माफक, भींत के ऊपर कोई चित्र बनाए है उसके माफक अनंत स्वरूपे पोतेज परिणम तु हुआ था, केवल ज्ञान स्वयं ही, ये क्योंकि वो ज्ञाकार है, वो एक्चुअली ज्ञानकार ही है, केवल ज्ञान ही इन सब को जानने रूप परिणमित हुआ है। तो कहते हैं अनंत स्वरूपे पोतेज परिणम तो हुआ थी, केवल ज्ञान ज परिणाम छे, माटे अन्य परिणाम क्या छे? यानी दूसरा परिणाम के कहा उसकी क्या, वो स्वयं ही परिणाम है। ये ज्ञार्थ परिणमन में क्या है, वो अन्य परिणाम वहां शुभाशुभ भी हो रहे थे, तो यहाँ अन्य परिणाम कहाँ है? वो स्वयं ही उस रूप परिणमित हो रहा है कि जे द्वारा खेद में उत्पत्ति था है। समझ में आई ना, ये खेद वाले परिणाम कहाँ है? वहां कुछ, वो स्वयं ही सबको जानने रूप परिणमित हो गया है। तीसरा पॉइंट क्या था यहाँ पर? केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक यानी भेद कहाँ है? तो कहते वही केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघातना अभाव ने लीधे, स्वभाव प्रतिघात घात हाँ अभाव ने लीधे, यानी उसके स्वभाव का घात करने वाला कोई वहां नहीं है। निरंकुश, निरंकुश समझते? अंकुश किसको कहते मालूम है? किसको का अंकुश? अंकुश यानी अंकुश ये जो है ना हथियार, वो हाथी के ऊपर वो माहौत बैठता है, अंकुश नाम का उसका ये जो उसको यहाँ टोकता है तो हाथी उसके वो तो चुभाता है, तो उसके हाथी उसके जो सिग्नल समझ जाता है जो कुछ करना है, तो उसको जिस अंकुश शब्द किसके लिए है? कोई उसके ऊपर कंट्रोल रखना, वो अंकुश है। और निरंकुश अभी उसको दूसरा कोई वहां निरंकुश अनंत शक्ति उल्लसी हुआ थी। अब अनंत शक्ति जो अंदर है वो बिल्कुल उसको कोई बाधा नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, परिपूर्ण जितनी है अमर्यादित शक्ति अंदर है पूरी की पूरी उल्लसित हुई है। उल्लसित हुई नहीं, विकसित हुई है, प्रकट हुई है, खिल गई है, बराबर खिल गई, प्रकट हुई, खिल गई। वो महाविकास वगैरह बात आई थी ना पहले। हाँ, सकल त्रिकालिक लोकालोक आकारमा व्यापी ने ये जो शक्ति उल्लसित हुई और समस्त जो तीन कालिक जो है लोकालोक के आकार में जिसको हम गेयाकार भी कहा था व्यापी ने कूटस्थपने अत्यंत निष्कंप रहु, सबको जान लिया है और ऐसा कैसा जानता रहेगा। तेथी आत्मा थी अभिन्न एवी सुखना लक्षणभूत अनाकुलता धरतु थको, क्योंकि जो केवल ज्ञान कहो या सुख वो तो आत्मा से अभिन्न है, तो सुखना लक्षणभूत अनाकुलता धरतु थको, सुख का लक्षण क्या है, सुख कैसे समझना, अनाकुलता। तो केवल ज्ञान न जो सुख है उसी को सुख कहा। माटे केवल ज्ञान ने सुख नो व्यतिरेक क्या छे, यानी उसमें डिफरेंस कहाँ है, भेद कहाँ है। केवल ज्ञान ही सुख है ये कह रहे। आथी केवल ज्ञान एकांतिक सुख छे एम सर्वथा अनुमोदवा योग्य छे। अनुमोदन योग्य का अर्थ क्या कि आनंद थी सम्मत करवा योग्य छे, इसी का भावार्थ। केवल ज्ञान मा पण परिणाम थया करता हुआ थी थाक लागे अने तेथी दुख थाय, माटे केवल ज्ञान एकांतिक सुख कई रीते होई शके एवी शंकानु अहीं समाधान करवामां आव्यु छे। अभी भावार्थ है नेक्स्ट पेज पर, 116 पेज पर भावार्थ अभी तो शुरू होना, अभी तो हेडिंग का अर्थ बताया उन्होंने। देखो 116 पर है, वो भावार्थ का ही कंटिन्यूएशन है। ऊपर जो लाइन के ऊपर है ना, परिणाम मात्र थाकनु के दुखनु कारण नथी, पण घाती कर्मोना निमित्ते थता है। वो तो निमित्त में वो बनाते हैं वो कराते ऐसा नहीं, घाती कर्मोना निमित्ते थता। अभी हम तो निमित्त उपादान का कुछ बातें सीखे, आप उमा बेन भी तारा बेन भी आते हैं ना संडे को, तो निमित्त किसको कहेंगे, कार्य रूप परिणमित नहीं। हाँ, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का उसका अपनी सादी भाषा में क्या है, निमित्त है। वो परद्रव्य में कुछ नहीं करता, उसकी उपस्थिति है और उस पर आरोप आता है ना, कथन आता है, कथन में आता है कि इसने कराया। पहले तो अमृतचंद्र आचार्य ने तो बताया था, क्या लिखा था देखो, ये जो घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से है ना, ये बात आई थी ना अभी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी ऊपर मैंने नीचे बढ़ता, वही 114 पेज पर एक नंबर के पॉइंट में, घाती कर्मो महामोहना उत्पादक हुआ थे। ये उत्पादक क्यों कहा, वो तो निमित्त है। निमित्त रूप से भी वो हमने कर्ता के भी भेद देखे थे, निमित्त को भी कर्ता कहेंगे, त्रिकाली उपादान को भी कर्ता कहेंगे, क्षणिक में भी दो कर्ता हो जाएंगे, तो ये कहने की पद्धति है। पर वो कैसा है, आरोपित कथन है, इसी को निमित्त कहकर उसको खास खोल दिया यहाँ पर भावार्थ में। देखो फिर से भावार्थ पढ़ रहे अभी हम, पहली लाइन, परिणाम मात्र थाकनों के दुखनों कारण नथी, यानी परिणाम ना ये कोई थकान का कारण नहीं है। हाँ जरा ये देखना, वो कैंसिल वाला दबाना, वो डायरेक्ट शुरू हो जाता है। फिर से, परिणाम मात्र थाकनों के दुखनों कारण नथी, पण घाती कर्मोना निमित्ते थता परसन्मुख परिणाम। क्या, कौन से परिणाम, परसन्मुख परिणाम। और वहां पर भी जीव स्वयं घाती कर्म का लक्ष्य करके, पर का लक्ष्य करके उसको परिणाम करता है, थाकना के दुखना कारण छे। केवल ज्ञान मां घाती कर्म अविद्यमान हुआ थी, जब केवल ज्ञान हुआ है तो घाती कर्मों का पूर्ण क्षय हो चुका है, सत्ता में से नष्ट हो गए, त्या थाक के दुख न थी। देखो इन्हें निमित्त को तरह देखा, वो निमित्त रूप से कोई है नहीं, तो निमित्त नहीं है तो हमने जीव के परिणामों को अनुमान लगाया कि यहाँ जो कोई थाक भी नहीं है। निमित्त रूप से जहाँ कर्म थे, मोहनीय कर्म था, तो मोहनीय कर्म का उदय हम देख रहे, हम तो निमित्त की तरफ देख रहे, तो वहां पता है कि यहाँ जीव में, जीव के भाव में भी मोह चल रहा है, और ऊपर का लक्ष्य करके स्वयं वो थकान रूप वहां दुख रूप परिणमन चल रहा है। अब दूसरा पॉइंट, वरी केवल ज्ञान पोतेज परिणामशील छे, परिणमन केवल ज्ञान नो स्वरूप छे, उपाधि नथी। परिणाम नो नाश थाय तो केवल ज्ञान नो ज नाश थाय, स्वभाव छे। परिणाम ना तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, कभी मानते हैं ना कि मोक्ष हुआ है क्या परिणमन का अभाव हुआ, नहीं नहीं स्वभाव का नाश नहीं होता है, स्वभाव तो जैसा है वैसा परिपूर्ण प्रकट हो जाता है। आ रीते परिणाम केवल ज्ञान नु सहज स्वरूप हुआ थी, केवल ज्ञान ने परिणाम द्वारा खेद हो ही सके नहीं हो तो नहीं। अब तीसरा पॉइंट, वही केवल ज्ञान आखा त्रिकालिक लोकालोकना, त्रिकालिक लोकालोक यानी लोकालोक के तीनों काल के पर्याय सहित वाला वो लोकालोक, लोकालोकना आकार ने जिसको हम गेयाकार कहेंगे, समस्त गेयाकार समस्त पदार्थों ना त्रिकालिक गेयाकार समूह ने सर्वदा यानी हर समय हमेशा अडोलपणे जानतु थकू यानी उस हाँ अडोल यानी उसमें कोई हिना दिखता नहीं हो रही, गैप भी नहीं सर्वदा तो बात आई ना, हर समय अडोलपणे जानतु थकू अत्यंत निष्कंप। हमारा ज्ञान कैसा है, कभी हिनादिक भी होता है ना, कंपा है मैं कभी इसको जानू कभी उसको, वो तो सभी सभी जो लोकालोक है उसके तीन काल के सभी पर्यायों को एट ए टाइम जान रहे और जैसा है वैसा हर समय जान रहे, इसलिए उसको अडोल कहा, निष्कंप कहा, स्थिर कहा, अक्षुब्ध अनाकुल छे अने अनाकुल होवाथी सुखी छे, सुख स्वरूप छे। केवल ज्ञान है वही सुख स्वरूप बात है, कारण के अनाकुलता सुखनुज लक्षण छे। और कहीं पढ़ा है तारावेन आपने अनाकुलता सुख का लक्षण है? छड़ाला में क्या आया? तीसरी ढाल की शुरुआत में मोक्ष में आकुलता नहीं होती है ऐसा उसमें वर्णन, माँ ही ऐसा शब्द आता है उसमें। हाँ अनाकुल लक्षण है उसका देखो ये थकान कहो या अन्य कोई मानसिक चिंता कहो ये सब क्या है, आकुलता आकुलता है और आकुलता है वही दुख है। तो अनाकुल होवाती सुखी छे सुख स्वरूप, कारण के अनाकुलता सुखनुज लक्षण छे। आम केवल ज्ञान अने अक्षुब्धता अनाकुलता वाता ने मोह क्षोभ रहित परिणाम, चारित्र की बात बताई थी ना हमने सातवीं गाथा में देखा था प्रवचन सार के, अक्षुब्धता ने अनाकुलता भिन्न नहीं होवाती, केवल ज्ञान अने सुख भिन्न नहीं, यानी केवल ज्ञान है वही सुख है वो भिन्न नहीं है। आ रीते अब इसका सर वाला बताए तात्पर्य, घाती कर्मों ना अभाव ने लीधे परिणाम कोई उपाधि नहीं हुआ ने लीधे, स्वभाव है ना वो कोई उपाधि नहीं है। और तीसरी बात, केवल ज्ञान निष्कंप स्थिर अनाकुल हुआ ने लीधे केवल ज्ञान सुख स्वरूप ज छे, इस तरह से ये अमृतचंद्राचार्य की टीका का भावार्थ हुआ। हमको अभी उल्टा चलना है, जैसे नाचार्य की टीका भी पढ़ना बाकी है 113 पर आना, 12 पे अमृत चंद्राचार्य की संस्कृत है और 113 पर जैसे नाचार्य की संस्कृत टीका है, पढ़ते वहां से। अथ अभी हेडिंग पहले बताएंगे, अनंत पदार्थ परिच्छेदन छेदनात् केवल ज्ञानेपि खेदो अस्ति इति पूर्व पक्षे सति परिहारम आह, यानी अनंत पदार्थों के परिच्छेदन यानी उसको जानना, अनंत पदार्थों का जानना हो रहा है उसके कारण केवल ज्ञान में भी खेद होता है, खेद यानी थकान होती है, इतने को जानना कितने थक जाते होंगे। ऐसे पूर्व पक्षे सती, पूर्व पक्षे कोई शिष्य ऐसा प्रश्न करता है ऐसा होने पर परिहारम आह उसका खंडन करते जम केवलम ति नानम तम सौख्यम यत केवलम इति ज्ञानम तत् सौख्यम भवति, जो केवल ज्ञान है वह सौख्य है तस्मात् इसलिए खेदो तस्सन भणिदो तस्य केवल ज्ञानस्य खेदो इतले दुखम न भणितम, यानी इसलिए उस केवल ज्ञान के खेद यानी दुख नहीं बताया। तदपि कस्मात, वह भी क्यों? जम्मा घादी खयम जादा, यस्मात यानी क्योंकि मोहादि घाती कर्माणि क्षयम गतानि, मोहादि घाती कर्मों का क्षय हो चुका है। तरही तस्य अनंत पदार्थ परिचित्ति परिणामो दुख कारणम भविष्यति। अब कहते मोह नहीं है तो कहते तो फिर वहां पर जो अनंत पदार्थों का जानने रूप परिणाम है वो दुख का कारण होगा, क्योंकि इतने को जानना है उससे दुखी होते होगे। ये दूसरा प्रश्न। तो कहते नैवम, ऐसा नहीं है। परिणमंच सोचेव, तस्य केवल ज्ञानस्य संबंधी परिणामश्च सएव सुखरूप एव इति, यानी उस केवल ज्ञान के संबंधी जो परिणाम है वही सुखरूप ही है, अन्य कोई वहां नहीं है। इदानीं विस्तरः, इन सबका विस्तार करके समझाएंगे। ज्ञान दर्शनावरण उदये सति युगपत अर्थान ज्ञातुम अशक्यत्वात् क्रम करण व्यवधान ग्रहणे खेदो भवति। आप कहेंगे अकेले मोहनी से खेद होता होगा, तो कहते ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय है, और वहां अंतराय में वीर्यांतराय भी साथ में होता है। जहां जहां ज्ञान होता है वहां वीर्यांतराय का भी होता है। तो अभी तक तो क्षोभम ज्ञान हो रहा था, है ना? तो कहते ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय होते हुए युगपत ने एट ए टाइम अर्थान ने पदार्थों को ज्ञातुम अशक्यत्वात्, जानना अशक्य होने से, यानी पदार्थों को युगपत जानना शक्य नहीं है, क्योंकि वहां तो आवरण है, वहां पर ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, वीर्यांतराय भी, वो सारे यानी वो तो जीव का पूरा स्वभाव जैसा है वैसा प्रकट नहीं हुआ है। इस कारण क्रम करण और व्यवधान ग्रहणे, ये जो ज्ञान में क्या पड़ता है? क्रम पड़ता है। करण यानी अन्य साधनों की आवश्यकता, निमित्तों की, इंद्रिया होती है, प्रकाश होना चाहिए, अन्य अन्य बहुत सारे हमने व्यवधान देखे थे इंद्रिय ज्ञान में। और व्यवधान यानी उसको जिसको हम कहते हैं अड़सर, जो विघ्न आते हैं बीच में, व्यवधान एक कर्म का भी व्यवधान है, अन्य भी बहुत सारे होते हैं, पराधीनता भी, हाँ बाधा, व्यवधान यानी बाधा आती है। इसलिए इनके कारण वो जानने में खेद होता है। आवरण द्वय अभावे सती, ये दो आवरणों का अभाव होने पर युगपत गहने नहीं, ग्रहणे चाहिए ना, ग्रह नीचे जो ग लगाया वो ग्रह होना चाहिए, द के नीचे ग्रह, द के नीचे ग्रह लगाना, ग्रह युगपत ग्रहणे केवल ज्ञानस्य खेदो नास्ति इति सुखमेव। यानी आवरण द्वय, यानी ये दो आवरणों का अभाव होने पर अभी एट अ टाइम जानने की बात वहां हो जाती है, युगपत ग्रहण यानी युगपत जानने में केवल ज्ञान के खेद नहीं होता, सुख ही होता है। तथैव उसी प्रकार तस्य भगवतो, उन भगवत के जगत्रय कालत्रयवर्ती समस्त पदार्थ युगपत परिच्छित्ति समर्थम अखंड एक रूपम प्रत्यक्ष परिच्छित्ति मयम स्वरूपम परिणमत सत, केवल ज्ञानमेव परिणाम। क्या कहते हैं अभी उस भगवान के क्या हो रहे हैं? जगत रहने तीन काल, ये तीन लोक, जगत रहने तीन लोक और कालत रहने तीन काल, तीन लोक और तीन काल वर्ती समस्त पदार्थों को युगपत ने एट ए टाइम एक साथ एक समय में जानने में समर्थ ऐसे जो अखंड एक रूप प्रत्यक्ष परिच्छित्तिमय यानी प्रत्यक्ष ज्ञानमय स्वरूपम परिणमत सत, प्रत्यक्ष ज्ञानमय स्वरूप से परिणमता हुआ केवल ज्ञानम एवं परिणाम। यहाँ केवल ज्ञान ही परिणाम है, अन्य कोई परिणाम की बात नहीं है। न च केवल ज्ञानात् भिन्न परिणामो अस्ति, केवल ज्ञान से भिन्न कोई अन्य परिणाम नहीं है। जैसे युगपत जो नहीं जानता है वहां पर पदार्थों को लक्ष्य कर करके ज्ञान रूप जानने रूप परिणमता है, तो वहां तो उसके तो अन्य परिणाम है, कौन सा? शुभाशुभ भी होता है, वहां राग भाव भी पड़ा है। ये न खेदो भविष्यति, अन्य परिणाम नहीं है कि जिसके कारण उनके खेद हो जावे। ये दूसरा व्याख्यान हम कल पढ़ेंगे, अथवा परिणाम विषय द्वितीय व्याख्यान हम क्रियते। परिणाम संबंधी दूसरा व्याख्यान जो है ना, वो वहां से हम कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देते।